आप हैं SBS हिंदी के साथ।
नमस्कार, आज रिपोर्ट की शुरुआत में चर्चा महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट की। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी गाड़ी में विस्फोटक मिलने में मुंबई पुलिस के ही एक अधिकारी की भूमिका सामने आई है। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के अन्य मामले भी सामने आ रहे हैं। मुंबई पुलिस के प्रमुख पद से हटाए गए परमबीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। पुलिस विभाग में होने वाले ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया है। भाजपा इस मामले की जांच CBI से कराने की मांग कर रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मामले को लेकर राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। कल यानी मंगलवार को उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की थी।
मांग की है कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। होम सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा कि ये सारी चीजें वो उसको देखेंगे और उसके ऊपर सरकार ये एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा।
देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी दी गई थी।
इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हुई और मुख्यमंत्री जी ने कंसर्न भी जाहिर किया।
राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को हटाए जाने की मांग भाजपा कर रही है। अनिल देशमुख का बचाव करने वाले NCP नेता शरद पवार को घेरते हुए केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद कहते हैं,
शरद पवार जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि देशमुख जी गृह मंत्री को इतना डिफेंड कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से। अब शरद पवार जी की प्रतिष्ठा को कैसे रिस्टोर किया जाए, ये हमको भी चिंता है क्योंकि देश के बड़े नेता है वो। तो ऐसा हमें लगता है कि शरद पवार जी की जो दो दिनों में राजनीतिक साख पर जो बहुत बड़ा धब्बा लगा है, उसका एकमात्र रास्ता है शरद पवार जी, आप कृपया करके अनिल देशमुख जी का इस्तीफा कराएं।
रविशंकर प्रसाद का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार विकास का नहीं बल्कि वसूली का काम कर रही है।
खेला की चर्चा तो महाराष्ट्र में बंगाल से होती है, लेकिन खेला महाराष्ट्र में भी चल रहा है। तो वहां के ATS की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैं देख रहा था, लेकिन कमाल हुआ कि पुलिस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे बोल करके बिना कोई सवाल लिए उठ गए, तो वो भी एक खेला ही है। परसों अपने पटना के प्रेस में मैंने कहा था कि ये महा लूट अगाड़ी है, अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया कि महा वसूली अगाड़ी भी है। वसूली वो एक कहावत है ना, डेमोक्रेसी इज फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना, तो एंड ऑफ द पीपल। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ऑफ वसूली, फॉर वसूली, बाय वसूली।
पुलिस अधिकारी के आरोप के आधार पर इस्तीफा मांगने को लेकर शिवसेना ने भाजपा पर पलटवार किया है। 2002 गुजरात दंगों के दौरान पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट के आरोप को याद दिलाते हुए शिवसेना नेता संजय राउत कहते हैं,
आप जरा गुजरात में जब हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थे या ये सब मंत्रीगण थे, तब संजीव भट्ट IPS या मिस्टर शर्मा और एक अफसर, उसने बार बार इस प्रकार के लेटर बॉम्ब गुजरात के सरकार और गुजरात के राज्यकर्ताओं के बारे में लिखे हैं, तो क्या उस लेटर के आधार पर गुजरात सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री या आज के मुख्यमंत्री पर आप कार्रवाई करने जा रहे हो? संजीव भट्ट ने जो एलिगेशंस किए थे वो परमवीर सिंह से भी गंभीर थे।
अनिल देशमुख का बचाव उनकी पार्टी NCP कर रही है। NCP नेता नवाब मलिक ट्रांसफर विवाद पर कहते हैं,
सीधे कोई भी निर्णय गृह मंत्री नहीं लेते, ये सच्चाई है, लेकिन जिस तरह से पत्र में सारी चीजें कही गई, उस तरह से किसी भी प्रकार के तबादले नहीं हुए।
महाराष्ट्र के बाद बात चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के सभी बड़े नेता पार्टी के लिए पसीना बहा रहे हैं। भाजपा लगातार बंगाली अस्मिता से स्वयं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर थे। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर और सत्यजीत रे के नाम से बड़े पुरस्कार शुरू करने की बात कही।
हमने नोबेल प्राइज की तौर पर, टैगोर प्राइज और ऑस्कार की तौर पर सत्यजीत रे अवार्ड बनाकर ये दो महान बंगाल के सपूतों को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने वाले हैं। और बंगाल क्यों, कलकत्ता को सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए का खर्च करेंगे।
पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की स्थिति अच्छी है, जबकि तमिलनाडु और केरल में पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं हो पाई है। वहीं कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है। सहयोगी दल भी अब कांग्रेस पार्टी को नसीहत देने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस की कमजोरी को लेकर कहते हैं,
मैं ईमानदारी से कहता हूँ, कांग्रेस को उभरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है, मेरी जमात वहां नहीं है, इसकी जमात भी इतनी वहां नहीं है, इसकी जमात हर जगह है या नहीं है। इसे कांग्रेस को फिर से जिंदा होना पड़ेगा और लोगों के मुश्किलात को देखना पड़ेगा, घर में बैठ कर नहीं हो सकता।
और अंत में थोड़ी बात कोरोना संकट की, जो एक बार फिर डराने लगा है। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मंगलवार को पूरे देश में 47,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इस बीच सरकार ने कोरोना के विरुद्ध टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अब 45 साल से अधिक लोगों को टीका लगाया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस बारे में कहते हैं,
1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो, जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है उसको मिलेगा, 45 से ऊपर।
बहरहाल टीकाकरण के साथ ही बचाव उपायों पर भी जोर दिया जा रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर कड़ाई बरतने के आदेश दिए गए हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न, SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं, वहां हम हैं।